की कृपा से। इसलिए नित्यानंद प्रभु जी की कृपा भी चाहिए, महाप्रभु जी की कृपा यदि कोई लाभ करना चाहता है तो नित्यानंद प्रभु की कृपा पहले आरंभ करे। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब वृद्ध हो गए, सब समय उनकी इंद्रियां कांप रही हैं, शरीर कांप रहा है, वृद्ध हो रहे हैं, दांत हिल रहे हैं, आंखें जवाब दी दी है, तो उस समय में भी इस चैतन्य चैतामृत को कहा, मदन गोपाल हमको इस ग्रंथ को लिखा रहे हैं। ठीक, जरा इसको तो मदन गोपाल जी उनसे लिखवा रहे हैं, इसलिए इतना अपूर्व ग्रंथ हुआ। ये चैतन्य महाप्रभु जी अपने जिसमें पाठशाला में अध्ययन कराते थे संस्कृत, उस समय अपने कुछ छात्रों को लेकर के पूर्व बंगाल में गए और वहां जाकर के जब वो भागवत का पाठ करते या कुछ हरी कथा कहते तो सब लोग मुग्ध हो गए, सब शिष्य होने के लिए आने लगे, काफी रुपया पैसा कपड़ा लत्ता सब उनको मिला। उसी समय में तपन मिश्र नाम का एक व्यक्ति वहां पर मिला, वो वेद वेदांत और शास्त्रों के बड़े भारी पंडित थे, भागवत के भी पंडित थे। चैतन्य महाप्रभु से आकर के बोले, आर यू अंडरस्टैंडिंग समथिंग, लिटिल दो। पंच चैतन्य महाप्रभु वॉज ए अध्यापक, ए टीचर, ए टीचर ऑफ संस्कृत, अ वेरी लिटिल पाठशाला, हे टू सम ऑफ हिज स्टूडेंट्स एंड वेंट टू ईस्ट बंगाल क्रॉसिंग गंजेज रिवर टुवर्ड्स ब्रह्मपुत्र वेर नाउ इज बांग्लादेश। देयर ही प्रीच्ड सो मच दैट सो मच लक्ष्मी केम, सो मच क्लॉथ एंड एवरीथिंग केम। ए ब्राह्मिन हु वाज वेरी लर्नड एंड स्कॉलर, ही ऑल्सो केम टू चैतन्य महाप्रभु एंड स्प्रेड फ्लाइट ऑन द लोटस फीट ऑफ चैतन्य महाप्रभु एंड अर्ज दैट यू शुड टेल मी व्हाट इज साधन साधन, व्हाट इज साधन एंड व्हाट इज साध्य। उन्होंने ये प्रश्न किया चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, जे जीव के लिए सबसे अच्छा साधन कौन चीज है और साध्य क्या है, या साध्य क्या है जीव मात्र के लिए और उसके लिए साधन क्या होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, साध्य और साधन जगत में बहुत हैं, किंतु ये सब बोगस हैं। साध्य एक है और साधन भी एक है उसका, कृष्ण का प्रेम ही एकमात्र साध्य है और उनकी भक्ति एकमात्र साधन है। किंतु इसका भी इशार है, तुम हरि नाम करो केवल, महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, मेरे उपदेश से करो, इसके द्वारा साध्य और साधन जो कुछ होगा तुमको जीवन में मिल जाएगा, जो कुछ साध्य है इसका निर्णय भी हो जाएगा, अपने आप वैष्णव लोग तुमसे मिल जाएंगे। और तुम क्या साध्य है और साधन है ये सब उसी के द्वारा तुम समझ जाएगा। मैंने ये वैष्णव कहाँ मिलेंगे, आप ही हमको कृपा करके ये सब बतलाएं। और ये अभी तुम वाराणसी में जाओ और वहां रह करके मेरे लिए प्रतीक्षा करना, मैं ठीक उपयुक्त समय में वहां पर आऊंगा और उस समय आकर के तुमको ये सब चीजें अच्छी तरह से बतलाऊंगा। वाराणसी में जाकर के हमारे लिए क्षेत्र तैयार करो। जैसे एक आदमी कहीं जाता है तो पहले अपने आदमी को भेज देता है, उस स्थान जाकर के ठीक करे व्यवस्था करे तब वो जाता है, ऐसे ही इन्होंने तपन मिश्र को वहां पर भेज दिया। ही सेंट ही टोल्ड द ब्राह्मिन तपन मिश्र दैट यू शुड गो एंड वेट फॉर मी अंटिल आई एम गोइंग टू जगत टू वाराणसी। व्हेन ही विल गो, ही वाज एट दैट टाइम अबाउट 16 ईयर्स। After that, when he will be of 24, then he will take sannyas. and then he will go to Jagannath Puri, and from there he will go to South India, and he will meet with Rai Ramanand, and then he will return to Puri, and then he will make a program to come to Varanasi after taking sannyas. So he told that you should wait there. बतलाया ये चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, क्यों? वो भगवान है, जानते हैं कि हमको जाना है, किंतु सन्यास लेने के बाद में हमको जाना है। तो उस समय मान ले कि 16 वर्ष की उम्र होगी, तो 8 वर्ष ये और 2-3 वर्ष और 8-3 11-12 वर्ष के बाद में वो आएंगे वाराणसी। किंतु महाप्रभु जी ने कहा ये तुम जाओ, मेरे लिए प्रतीक्षा करो, मैं वहां पर आऊंगा। तब तक तुम हरिनाम संकीर्तन करते रहो निरंतर और वैष्णव की सेवा करो। बिना वैष्णव की सेवा के हरिनाम भी नहीं होगा, हृदय भी उन्नत नहीं होगा। इसलिए उनके कहने से वो चले गए। गृहस्थ थे, अपनी स्त्री को और बच्चे को भी लेकर के वहां गए। वहां जाने के बाद में उनका लड़का रघुनाथ भट्ट, उन्हीं के लड़के का नाम था रघुनाथ भट्ट। हिज नेम वॉज रघुनाथ भट्ट। He also took his wife and children there in Varanasi, and he was waiting for Chaitanya Mahaprabhu daily, seeing like unke sabari ki bhati wo pratiksha karte rahe, Mahaprabhu ji kab aayenge. Is tarah se wo 8-10-12 वर्ष तक वो प्रतीक्षा करते रहे। चैतन्य महाप्रभु जी वहां से आए, उनकी स्त्री का देहांत हो गया, वो लक्ष्मी प्रिया वो जगत को छोड़ करके नित्यलोक में चली गई। इसके बाद में विष्णु प्रिया से उनकी शादी हुई, और कुछ दिन के बाद में गया में ईश्वरपुरी पास से भेंट हुई और दीक्षा लेकर के एकदम बदल गए। अब तो दिन रात कृष्ण कृष्ण कह करके रोने लगे। कुछ दिनों के बाद में घर भी छोड़ दिया और निष्ठुर निर्दया घाट से पार करके कंटक नगरी में कटवा में केशव भारती के निकट उन्होंने सन्यास लिया। माने क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सन्यास? ही टुक रेड क्लॉथ। These are the symptoms of the cloth of gopis or the collar of gopis. No? And they used to have kumkum. So his clothes are red. He was very good cheater, cheater than Krishna. So he took sannyas. Sannyas means to give repay to Srimati Radhika. He took sannyas. इसके बाद में तो वो सन्यास लेकर के फिर वो गए जगन्नाथपुरी और सब जगहों का दर्शन करके फिर वो वाराणसी में आए जगन्नाथपुरी से। दूसरी बार पहली यात्रा में नहीं आए। He came in second tour. First tour was ended at Ramkeli. He came to only to see Sanatan on Roop in first program, and in second program he came alone with only a Brahmin and a person. Three only came, and they came in Jharkhand. Jungle se ho karke jahan par jangali pashu pakshi ye sab rehte hain, bade bade baagh, singh, bhalu, hathi, और उनके बीच से चैतन्य महाप्रभु निकल रहे हैं। देखा यहाँ कहीं है, वो गठरी लिए हुए, लठिया लिए हुए, डर के मारे चिपट रहे हैं, और महाप्रभु हरे कृष्ण करते हुए चले जा रहे हैं। कोई डर नहीं। बाघ रास्ते में सोए हैं, उनके सिर पे पैर लग गया और वो भी हरे कृष्ण बोला। हाथियों का झुंड आ रहा है और महाप्रभु जी ने कहा हरे कृष्ण, तो वो हाथी भी Elephants become mad in Krishna name. इस तरह से सबको पागल बना करके वाराणसी में आए। वाराणसी में आने पर वही किसके पास में रहते थे, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के पास, चंद्रशेखर के पास में, चंद्रशेखर, ये चंद्रशेखर वो नहीं, चंद्रशेखर आचार्य का भवन नवदीप वाला वो नहीं, ये दूसरे महाराष्ट्रीय ब्राह्मण है शायद, देखना तो जो क्या है वो है, ये अलग है। तो तपन मिश्र के हैं या उनके यहाँ रहते थे, और वहां पर जो निमंत्रण देता विशुद्ध रूप में भक्त ब्राह्मण उनके घर में खाते, वहीं पर माधुकरी लेते और इनके साथ में रहने लग गए। सनातन गोस्वामी से वहीं पर उनकी भेंट हुई और वहीं पर तपन मिश्र से इनकी भेंट हुई। उस समय इनके लड़के थे रघुनाथ भट्ट। रघुनाथ भट्ट को उन्होंने काफी संस्कृत पढ़ाया, वेद वेदांत उपनिषद सब कुछ पढ़ाया, उसमें पारंगत किया और महाप्रभु का उन्होंने दर्शन किए। महाप्रभु जी ने शक्ति उनमें संचरित की और बोले तुम्हारा पिताजी वैष्णव है, केवल वैष्णव नहीं परम भागवत है। इसको हमने पहले ही कहा था जो तुम जाकर के वाराणसी में आना, हमको ईस्ट बंगाल में हमसे इससे भेंट हुई थी और हमने साध और साधन जो कुछ है इनके हृदय में संचरित की है, इसलिए ये परम महाभागवत हैं। इसलिए पिता की सेवा मत छोड़ना, जब तक ये जगत में रहे तब तक इनकी सेवा करना, पिता के रूप में नहीं, किस रूप में, वैष्णव रूप में, वैष्णव गुरु के रूप में तुम देखना। वैष्णव का संबंध सब नित्य होता है, माता पिता आते हैं और खत्म हो जाते हैं। माता पिता पूज्य हैं किंतु उसे भी पूज्य यदि माता पिता वैष्णव हो तो वो सर्व पूज्य हैं। ऐसे माता पिता की सेवा करके घर में रह करके भी यदि करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। इसलिए गोपाल भट्ट जी जब तक उनके पिताजी थे तब तक वहां रह करके सेवा किया, वैष्णव थे, महाप्रभु के कृपा पात्र। और ये भी इन्होंने जब तक उनके पिताजी प्रकट रहे तब तक इनकी सेवा किया। महाप्रभु जी ने कह दिया था कि आप सेवा करना किंतु शादी मत करना, और ऐसे गोपाल भट्ट को भी कह दिया था माता पिता की सेवा करो और रहो, किंतु माता पिता जी के चले जाने के बाद में तुम घर में मत रहना, तुम्हारे लिए स्थान मुकर्रर करता हूँ कहाँ, वृंदावन में तुम जा। इनको भी कहा अपने पिताजी के अप्रकट होने पर तुम यहाँ मत रहना, तुम चला जाना वृंदावन में, वहां पर रूप सनातन जी मिलेंगे, उनके चरणों की छत्र छाया में रह करके तुम साधन भजन करना। इसलिए चेतन महाप्रभु वहां से जब चले आए कुछ दिनों के बाद ही तपन मिश्र बहुत वृद्ध हो चुके थे, वहीं पर उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और इसके बाद वो चले आए वृंदावन में। वृंदावन में हम लोग कहा जहाँ आश्रम है रूप सनातन गौड़िया मठ, उसी के पीछे की तरफ में एक आश्रम सा है, उसमें वन जंगल था वृंदावन में। जैसे रूप सनातन जी रहते थे, रूप गोस्वामी की कोई उस समय दामोदर मंदिर भी नहीं था और इस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, केवल जंगल था, केवल कुंज थे वृंदावन में और कुछ नहीं था। तो एक कुंज में सेवा कुंज के अंतर्गत में उसी के पास में रहते थे हमारे रूप गोस्वामी जी, और वहीं पर छोटा जीव गोस्वामी भी बहुत छोटे थे, वहां पर रह करके उनकी सेवा करते थे। पीछे से कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो रूप सनातन का दर्शन नहीं किया था, जीव गोस्वामी का दर्शन किया था, वो वहीं पर आकर के रहता करके उनकी छत्र छाया में भजन करते थे। ये राधा दामोदर मंदिर में, राधा दामोदर मंदिर नहीं था उस समय में, गोविंद जी अभी प्रकट नहीं हुए थे, वो पीछे से प्रकट हुए, मदन मोहन भी उस समय प्रकट नहीं हुए थे। चारों तरफ में सुंदर वन और कुंज वहां पर था। उस समय में हम लोगों के मठ के पास ही में एक जगह है, अब तो घर और मकान हो गया है, वहां पर एक मंदिर जैसा है, उसी में गोपाल भट्ट जी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी रहते थे। जैसे गोपाल भट्ट जी रहते थे राधा रमन घेरा में, उस समय राधा रमन घेरा नहीं था, वहां पर तो जंगल था, एक पेड़ के नीचे रहते थे, उसी में अपने ठाकुर जी को रखते थे और ठाकुर जी का उसी में डोला बनाते थे और झूलाते थे, ऐसे ही ये इस कुंज में रहते थे। ये पासी में रूप गोस्वामी जी की जो वैष्णव राज्यसभा थी उसी में ये भागवत का पाठ करते थे। बड़े सुंदर रूप में, बड़े सुंदर मधुर रूप में उच्चारण के साथ में और श्रीमद् भागवत का पाठ प्रवचन करते और उसकी इतनी सुंदर व्याख्या करते जो कि रूप सनातन गोस्वामी ने बृहद भगवतामृत के रसायन में दिया है। ये सब चीजों को पाठ करते हमारे चैतन्य महाप्रभु की ये देन है, उनके ये विचार हैं। इन्हीं को चीजों को सुन करके और काशी में रहते समय सनातन गोस्वामी तो 7 दिन सुना और ये उसके पहले से ही सुन रहे थे। उनको तो एक लिंक चाहिए, एक लाइन ऑफ थॉट उनको चाहिए, बस लाइन उसको लेकर के और इतनी सुंदर व्याख्या करते जो कि जिसी को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि ये पीछे से दिया है। रूप सनातन जी और जितने वहाँ पर गोपाल भट्ट थे उसमें जो जो वैष्णव लोग थे, गौड़ीय वैष्णव लोग, सब सब सुनने के लिए उनके प्रवचन में आते थे और उनको सुनाते थे। रूप को एक उस सभा में ऐसा था कि कोई भी एक ऐसा नहीं था जो उनके भागवत व्याख्या को सुन करके मुग्ध न हो जाए। कोई कोई सुन करके आंखों से जिनकी आंसू बहने लगते, किसी किसी को रोमांच हो जाता, किसी को पुलक हो जाता, किसी को कुछ होता, कोई भाव विस्मित हो जाते, देह गे की सबको सुधु भूल भूल जाते। लोगों ने देखा जी सबके तो भाव विवल हो रहे हैं, कोई तटस्थ व्यक्ति था उसने देखा जी रूप गोस्वामी को कुछ नहीं हो रहा, वो चुपचाप ऐसे बैठे हुए हैं, आंखों में आंसू नहीं है, पुलक नहीं है, रोमांच नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे चुपचाप बैठे हैं। तो उसने देखा जी सचमुच में बैठे हैं या मर गए हैं या क्या हो गया है। रुई लिया और उनके नाक के पास में ले गए तो रुई तो जैसे तैसे उनके हाथ में फफोले हो गए उनके श्वास से। उसमें उन्होंने एक श्लोक लिखा, क्या लिखा, छोटी मछली होती है वो थोड़े से जल में जब भी फड़फड़ करती है तो वो पानी गंदा हो जाता है, किंतु वही मछली यदि समुद्र में छोड़ दिया जाए तो हजार कुछ भी करे कुछ भी गंभीर पानी में कुछ नहीं होगा, था ही नहीं जो कितना पानी में वो डूब जाएगी। उसी तरह से ये अष्टसात्विक विकार हैं। साधारण एक व्यक्ति है उसको तो तोड़ मोड़ करके रख देगा, किंतु रूप गोस्वामी के भाव गंभीर हृदय में जाकर के वहां पर कोई था ही नहीं पाता है, कोई लगा ही नहीं पा रहे जी इनको क्या अवस्था है। उसमें संपूर्ण रूप से वो कृष्ण लीला में प्रविष्ट कर जाते हैं, उन लीलाओं में जिसका वर्णन होता है। ये भी पाठ करने वाले सोचते थे हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये छोटे भाई की तरफ में रूप सनातन जी इन लोगों को पालते और पोसते और विचारों को इनको देते थे। चैतन्य महाप्रभु के भी ये बड़े प्रिय हुए, इसलिए ये 6 गोस्वामी एक एक से अद्भुत हैं। जब गुणों की दृष्टि से विचार करते हैं तो देखते हैं कि सभी गोस्वामी हैं और जब रस की दृष्टि से विचार करते हैं तो देखते हैं कि रूप गोस्वामी सबसे श्रेष्ठ, सबसे सिरमौर है, उन्हीं के विचारों को सभी लेकर के चलते हैं। यहां तक सनातन गोस्वामी भी, और की तो बात क्या। इसलिए इन चीजों को पाने के लिए भाई ऐसे वैष्णवों की कृपा की जरूरत है, साधन से ये चीज नहीं होगा, साधन सापेक्ष नहीं है, ये कृपा सापेक्ष है, विशेष करके रागानुगा का भाव जिसको देने के लिए हमारे गोस्वामी लोग सब आए थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी इसी के लिए आए थे। इसलिए ऐसा यदि वैष्णव हो संप्रोप से तन मन विचार सब दे करके उसको आत्मसमर्पण करके दिन रात उसकी सेवा करेंगे, सेवा माने क्या, वो क्या चाहते हैं, क्या करने से उनकी प्रीति होगी, इसके लिए चेष्टा करेंगे, तब जाकर के कहीं ये भाव का एक कण आ सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। एक है गोसाई जार मुई तार दास, ए छो गोसाई कई चरण बंदन जा है से विघ्ननाश, इन 6 गोसाई की कृपा से विघ्ननाश हो जाएगा। विघ्ननाश माने क्या, जितने हमारे अंदर में कपटता है, धूर्तता है, संसार भोग की लालसा है, किसी न किसी रूप में ये सब अनर्थ अपराध सब दूर हो जाएंगे। और अभीष्ट पुराण, अभीष्ट माने क्या, जिसको जो अभीष्ट है वो चाहेगा जी हमको संपत्ति मिल जाए, संपत्ति खूब भगवान लक्ष्मी उसको दे देंगे, जाओ भोग करो। यदि कोई चाहेगा जी स्वर्ग मिल जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा, कोई चाहेगा जी हमको प्रतिष्ठा खूब मिले तो प्रतिष्ठा प्रभु ऐसे देंगे, डूब जाओ उसमें, रह जाओ डूब करके, उसे निकलो ही नहीं। मुक्ति चाहो तो मुक्ति भी दे देंगे, किंतु मुक्ति नहीं देंगे, वो मुक्ति देंगे दूसरे प्रकार का। कैसी मुक्ति? कृष्ण के चरणों की सेवा रूपी मुक्ति देंगे, किंतु हम लोग उससे भी संतुष्ट नहीं। वो लोग संतुष्ट किसमें हैं? बस राधा जी की पाल्यदासी हो, इसके अतिरिक्त तो वो संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए इसको भी ये पूर्ण कर देंगे, क्योंकि स्वरूपता तो वही है, इसलिए इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहता है, तब उसको मिलता है। अभिष्ट पुराण इच्छा ये गोसाई जार मुई तार दास तार सवार पदरेणु मोर पंचग्रास। हमको खाने के लिए तरह तरह की चीजें चाहिए, नहीं तो जीवन धारण नहीं होगा। हमारे पांच प्राण हैं, पंचग्रास पांच प्राण है ना, तो बिना भोजन का हो जाएगा, बिना श्वास के लिए हुए हो जाएगा, बिना पानी पिए हो जाएगा, नहीं होगा। उसी प्रकार से रूप सनातन की चरणों की धूली, उनकी कृपा ही हमारे लिए पंचग्रास है, और हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या इच्छा गोसाई जार मुई तार दास, जार मुई तार दास, चैतन्य महाप्रभु के प्रिय कौन, रूप गोस्वामी के प्रिय कौन है? ये लोग गोसाई लोग हैं, महाप्रभु के बड़े कृपा पात्र। इच्छा गोसाई जार, किसके जात? महाप्रभु उनके ये दास हैं। हम इन दासों के दास जो हैं, इनकी कृपा ही हमारे लिए पंचग्रास है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमको और कोई चीज की जरूरत नहीं है, उनकी बस कृपा की हमको जरूरत है। पंचग्रास ऐसे गुसाई जबे ब्रज कैलन बास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिलेन प्रकाश। इसलिए ये छह गोसाई ऐसे ही हैं। इसमें से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी भी एक, ये छह गोसाई में से एक है, इसलिए उनकी कृपा की हम लोग प्रार्थना करते हैं। आई हैव टोल्ड फॉर यू, वी वांटेड टू नो समथिंग अबाउट हिम, से बतलाया कि इस पृथ्वी लोक के ऊपर में स्वर्ग है। स्वर्ग को वो बतलाया भूर भुआ स्वह मह जन तप सत्य। ब्रह्मांड में ये ऊपर के जितने लोग हैं पृथ्वी के छोड़कर के, ये सभी को यहां पर स्वर्ग बतलाया गया। तो पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक भोगों की दृष्टि से बड़ा होने पर भी साधन के लिए पृथ्वी ही सबसे श्रेष्ठ है। तो यदि कोई लोग इस जगत में बड़े सुंदर सुंदर कार्य करते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए कर्मी लोग जो सत्कर्मी हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसके ऊपर में ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक बतलाया किसको? दो प्रकार के ब्रह्मलोक हैं, एक ब्रह्मा का लोक और एक ब्रह्मलोक। ब्रह्मा का लोक सत्यलोक है, जिसमें ब्रह्मा बड़े बड़े देवर्षियों के साथ में, महर्षियों के साथ में वहां पर रहते हैं। यह ब्रह्मांड के अंतर्गत है। और वो जो ब्रह्मलोक है, ब्रह्म का लोक, वो इसे ऊपर है, बिरजा नदी से भी ऊपर है। उस ब्रह्मलोक में वो जाते हैं जिनको भगवान वध करते हैं, जिन असुरों को, और जो ब्रह्मवादी जो भगवान में अपने स्वरूप को मिला करके मुक्ति चाहते हैं, ऐसे लोगों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। इस ब्रह्मलोक से भी ऊपर है शंकर जी का लोक, क्या सदाशिव, और इससे भी ऊपर है वैकुंठ। यहां पर ब्रह्मलोक का तात्पर्य वो बतलाया, ब्रह्म का लोक, पर ब्रह्म का लोक, वैकुंठ लोक। इससे भी ऊपर है गोलोक, तस्य उपरि गमांग लोक, गौओं का लोक, गौओं का लोक से ये मत समझना गोलोक से जो गाय का ही है, बल्कि समझो गो गोप गोप गोपी गोवत्स गोपी ये सबको समझो, इन सब का लोक है। केवल यदि गोलोक होगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तब गोलोक वो है जो ब्रह्मांड के अंतर्गत में है, जहाँ पर कि सिद्ध लोग रहते हैं, और गाय है कौन, सुरभि, जिसको ब्रह्मा के आदेश से जो सुरभि इंद्र के साथ में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आई थी, वो जिस लोक में रहती है उसका नाम है गोलोक। वो उस गोलोक से अलग है, रमाप्रिय वैकुंठ नहीं, उसे भी नीचे इस ब्रह्मांड के अंतर्गत में है। रमापति का लोक भी इधर है, जहाँ पर कि सुरभि गाय रहती है, उसको उन्होंने बुलाया था, और बुला करके इंद्र को कहा था कि इनके अनुगत्य में तुम कृष्ण यहाँ जाओ गोवर्धन में, तब तुम्हारे ऊपर में कृष्ण कृपा करेंगे। और जहाँ पर कि यहाँ पर गोपी नहीं रहती है, सुरभि गाय और इनके संततियाँ रहती हैं, और उस गोलोक में प्रधान है गो गोपी गोप गोवत्स सभी, वहाँ पर गोपियों के साथ में राज क्रीड़ा इत्यादि करते हैं। उसके भी तीन चार खंड हैं। पहला खंड बाउंड्री लाइन वो कहलाता है गोलोक, उसके भीतर में द्वारका, उसके भीतर में मथुरा, उसके भीतर में ब्रज। इस ब्रज के भीतर में भी पहले आएगा गोकुल, इसके बाद आएगा वृंदावन नंदगांव इत्यादि, और इसके बाद में आएगा राधा कुंड, ये सर्वोत्तम स्थान है। तो जो लोग जैसा भजन करते हैं उसके अनुरूप में उनकी गति होती है, सबकी एक गति नहीं होती। एवं बहुबुद्धि रूपैश्च चरामि इह वसुंधराम ब्रह्मलोकांच कौन्तेय गोलोकांच सनातनम्। कृष्ण ने कहा हे कौन्तेय अर्जुन को, ये स्कंद पुराण में अर्जुन और कृष्ण का संवाद हुआ गोलोक के संबंध में, वहां पर हे कौन्तेय अर्जुन इस प्रकार से बहुत रूपों में इस बद सुंदरा पृथ्वी पर और ब्रह्मलोक में विहार करता हूं। ब्रह्मलोक माने यहां पर गोलोक वृंदावन इत्यादि सभी, तो गोलोक ब्रह्मलोक इत्यादि में विहार करने पर भी सनातन गोलोक के नित्य अवस्थान करी, सनातन जो गोलोक है उसमें नित्य निवास करता हूं, वैकुंठ से भी ऊपर। लो अब नहीं कहने
गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदा कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय यं प्राप्तयं संते समते दीपाय नो विरसा कविराय पुत्रैति तन्मात्रया सर्वोभिमेयो
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् त्वयैवास्मि त्वयैवास्मि न जीवामि त्वया विना राधे तम नाम चरण।
कल से हम लोगों का कार्तिक व्रत अथवा नियम सेवा अथवा पूज्य व्रत अथवा दामोदर व्रत, चार इसके नाम हैं। कल से हम लोग नियम पूर्वक उसका पालन करेंगे। विशेष करके चातुर्मास के अंतर्गत ये पड़ता है, जो चार महीने से ठीक व्रत को नहीं किए, यदि एक महीना भी नियम पूर्वक जैसे नियम है इसका पालन किया जाए तो उसका फल हो जाता है। कुछ लोग चातुर्मास व्रत नहीं करते, केवल एक कार्तिक का व्रत कर लेते हैं, किंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि भगवत भजन करना है, भक्ति रखना है भगवान के चरणों में, तो जो चैतन्य महाप्रभु जी ने जिस चीज को पालन किया है, हमारे गुरुवर्गों ने जो पालन किया है, हमारे गुरुवर्गों में सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार और नारद जी भी आते हैं, व्यास जी भी आते हैं, मध्वाचार्य आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, और उसके बाद में महाप्रभु आते हैं, नित्यानंद प्रभु आते हैं, स्वरूप दामोदर राय रामानंद प्रभु आते हैं, और आज तक हमारे गुरुवर्ग जी हैं। शास्त्रों में ब्रह्मा जी का भी उल्लेख है, जो वो चातुर्मास से पालन करते थे। सनत सनंदन कुमार ये चार महीने नारद जी के घर पर रहे, छोटी सी झोपड़ी, बहुत निम्न कुल में पैदा हुए, छोटी सी झोपड़ी में किसी प्रकार से जीवन निर्वाह करते थे, इनकी मैया करती थी, और 5 वर्ष के लड़के थे, केवल 5 वर्ष की उम्र थी। उन्हीं के घर पर उनके ज्येष्ठ भ्राता लोग आए, सनत सनंदन सनत कुमार। नारद जी का यह दूसरा जन्म या तीसरा जन्म था, तो उन्होंने चातुर्मास से व्रत पालन किया 4 महीने, और उनका जूठन खाया, उनके अधरामृत अर्थात हरि कथा श्रवण किया, और अधरामृत मैंने जूठा भी खाया, चरणों की धूली सिर पर लगाए, उनका चरणोदक पान किया, और उसका यह फल हुआ कि बहुत थोड़े दिनों में ही उनको भगवान के चरणों में अत्यंत अहेतुकी और शुद्धा भक्ति हुई। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण होते हुए भी जगत के जीवों के लिए साधन किया, और वो 4 महीने प्रतिवर्ष करते थे कि 4 महीने का व्रत करते थे, किंतु चैतन्य के सामित में एक का स्पष्ट उल्लेख है। दक्षिण में गए कावेरी के तट पर श्रीरंगम स्थान में, और वहीं पर 4 महीने का व्रत किया, और वो रहे वेंकटेश्वर भट्ट, गोपाल भट्ट, गंगा सरस्वती इत्यादि के घर पर। 4 महीना केश नहीं बनाया, 4 महीने पलंग पर नहीं सोए, 4 महीने पत्ते में खाए, वो फूल का बर्तन होता है, कांसे का बर्तन होता है, सोने का बर्तन होता है, या चांदी के बर्तन होते हैं, उसमें नहीं, मोटे अच्छे पलंग पर नहीं, महाप्रभु तो कभी नहीं किया, किंतु दूसरों के लिए भी बतलाया। अच्छी अच्छी सब्जियां जैसे लौकी इत्यादि है, बैंगन है, ये सब का व्यवहार न किया जाए, परवल इत्यादि का। खुद साधारण जीवन में रह करके भगवान का भजन करना चाहिए नियम पूर्वक, वो भी तीर्थ स्थान में और साधुओं के संग में, जो शुद्ध वैष्णव हो उनके साथ में रह करके ये व्रत करना चाहिए। यदि हम वृंदावन में भी रहते हैं, ये तो स्थान सर्वोत्तम है, वृंदावन है, राधा कुंड, श्याम कुंड, ब्रजमंडल, किंतु इनके यहाँ रहते हुए यदि शुद्ध वैष्णव का संग नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। वैष्णव के संग में होना चाहिए, अंततः कार्तिक का महीना तो जरूर होना चाहिए, इसलिए चातुर्मास का व्रत पालन करना सबके लिए उचित है। इसमें प्रतिदिन सवेरे यदि और आगे नहीं उठ सके तो 4 बजे के बाद में तो सोइए मत, 4 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, 3 बजे 3:30 बजे शायद प्राय ब्रह्म मुहूर्त लगता है। अलग अलग महीनों में अलग अलग थोड़ा सा इधर उधर होता है, इस समय में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है, इसलिए 4 बजे के बाद में तो किसी भी ब्रह्मचारी को, किसी भी नियम पालन करने वाले को नहीं सोना चाहिए। हमारे वैष्णव लोग रूप सनातन इत्यादि तो सोते ही नहीं थे, या 2-4 मिनट सो लेते, 1 घंटा सो लेते, किंतु हम लोग ऐसा करने से अभी बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए अपने शरीर के अनुकूल जिसको जितना सही होता है उस तरह से रहेंगे। प्रतिदिन आरती में जरूर आना है, या तो आरती स्वयं करें या आरती दर्शन करें ठाकुर जी का, विशेष करके राधा कृष्ण का राधा दामोदर जी का ये आरती देखना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। बड़े उल्लास के साथ में, भावना के साथ में उनका आरती दर्शन करें सकते हैं। और स्वयं घी का प्रदीप मंदिर में जलाएं ठाकुर जी के लिए और तुलसी के नीचे। तुलसी सेवा इसमें बहुत जरूरी है, ठाकुर जी को प्रदीप और इधर में तुलसी जी को प्रदीप, दोनों बेला सवेरे और शाम दिया जाए। मंदिरों में और घरों में आकाश प्रदीप देने की बात हरिभक्ति विलास में लिखी गई है। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष होता था, आज आरंभ हो जाना चाहिए। शेष साई को देख करके कह दें, वो उसकी व्यवस्था करेगा जिससे कि आकाश में प्रदीप दिया जा सके घी की बत्ती में। और घी यदि संभव नहीं है तो तिल का तेल में दिया जा सकता है। घी भी कोई असंभव चीज नहीं है, वो भी देसी घी मिल जाता है, उसमें दिया जाए। केवल स्त्रियां ही देंगी, पुरुष लोग नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं। तब फिर स्त्रियों को ही यदि देना है केवल, तो पुरुष लोग दूसरे काम करेंगे, उनको हरि भजन में फिर अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए ये चीजें पुरुष और स्त्री का कोई विभाग नहीं है, भक्ति सबके लिए है, इसे सबके लिए ये सब करना उचित है। प्रतिदिन नियमित अनुसार में राधा दामोदरष्टक का पाठ करना चाहिए, जिसमें नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम्। पहले दास्य भक्ति से आरंभ होकर के अंत में मधुर रस में वो परिणत हो जाता है। कुछ नहीं जानते भी इसका पाठ करने से अपने आप वो अष्टक और स्तुति अपने आप भाव पैदा कर देगी निश्चित रूप में, जब ये श्रद्धा पूर्वक आप लोग करते हैं। वी शुड डेली ट्राई टू कीर्तन, डू कीर्तन ऑफ राधा दामोदर अष्टक विथ अ वेरी गुड मूड। पहले राधा जी का, पहले है जसोदा दामोदर, जसोदा जी ने उनको उदर में लेकर के ओखल में बांध दिया, और दूसरा गोपियों ने उनको बांध दिया राधा जी के खूंटे में। खूंटा किसको कहते हैं? अंचल के एक भाग को खूंटा कहते हैं। इस तरह से दोनों का खूंटा एक जगह बांध दिया, या राधा जी को ही स्वयं खूंटा मान लीजिए और उसमें कृष्ण को बांध दिया, ये तस से मस्त इधर न जा सकें, अंतर ध्यान गोपियों को न रहें। ये राधा दामोदर जी हैं। भावपूर्वक उनका राधा दामोदर जी का, राधा कृष्ण का अर्चन होना चाहिए, सेवन करना चाहिए। इस तरह से नियम पूर्वक रह करके, वैराग्य पूर्वक रह करके, सोना कम करके, ब्रह्मचर्य रह करके स्त्री पुरुष दोनों के लिए, और भोगों का प्रत्याग करके नियमन के अनुसार में ये सब काम करना चाहिए। भागवत का पाठ भी होना चाहिए, दशम स्कंद का पाठ भी होना चाहिए। हम लोग सवेरे राधा दामोदर अष्टक, इसके बाद में महाप्रभु जी की कुछ शिक्षाएं, जैसा प्रतिवर्ष होता है कुछ नई चीज होगी तो उसको भी हम लोग देखेंगे, किंतु पहले दामोदर अष्टक का पाठ कर लेंगे सवेरे, और शाम को श्रीमद् भागवत के श्लोकों का जो रसायन है उसको हम लोग करने की चेष्टा करेंगे, जो सनातन गोस्वामी ने जगत के जीवों के लिए वितरण किया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण की विशेष विशेष लीलाएं ये कार्तिक महीने में हुई थी। सबसे समस्त लीलाओं में जो सिरमौर है, सर्वश्रेष्ठ लीला है, वो राष्ट्रलीला शारदीय पूर्णिमा से आरंभ हुई थी, उसी दिन हुआ था। इसलिए समस्त लीलाओं की चूड़ा चक्रवर्तिनी ये रासलीला कल के दिन ही में चंद्र के उदित होते हुए ही ये आरंभ हुई, इसलिए शारदीय रास पूर्णिमा कहलाती है। दूसरी बात, इसके पहले दिन ही जब आरंभ होता है तो उस दिन इसी महीने में ही कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा गोवर्धन जी की पूजा हुई थी। इसी महीने में जो अष्टमी आएगी कृष्णाष्टमी, कार्तिक शुक्ला अष्टमी, उसी दिन में गोपाष्टमी हुई थी, जिसमें कृष्णा थोड़े से बड़े हो गए हैं, बछड़ियों के बदले अब गायों को चराने के लिए गए, तब उसका नाम हुआ गोपाष्टमी। पहले कृष्ण जब छोटे से थे तो छोटे छोटे बछड़ों और बछड़ियों को चराया करते, गायें तो बड़ी, बछड़े और बछड़ियां बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, दो एक वर्ष में ही बड़े हो जाते हैं। तो कृष्ण जब 5-6 वर्ष के हो गए तो वो काफी बड़ी हो गई, तो उनमें से कुछ को बच्चे हो गए, तो बच्चे हो गए अब तो वो गायों में दल में जाएंगी, किंतु वो कृष्ण को छोड़ करके चरती नहीं, इसलिए कृष्ण और उसके पिता और सब लोग मिलकर के निर्णय किया ये गायें कोई चरती नहीं है, इसलिए ये छोटी छोटी बछड़ियां अब गाय हो गई हैं, इसलिए इसको चराने के लिए ही कृष्ण को जाना पड़ेगा। तब फिर गोपाष्टमी है, तब फिर कृष्ण जब चराने के लिए गए तो फिर वो गई चरने के लिए। इसी महीने में कृष्ण को यशोदा मैया ने बांधा और गोपियों ने राधा जी के साथ में उनको बांधा। इसी में उन्होंने गोवर्धन को धारण किया, इसी महीने में गोवर्धन को धारण किया और इंद्र का मान मर्दन हुआ, इंद्र ने कृष्ण का अभिषेक किया, उनका नाम गोविंद रखा। इसी महीने में केसी का वध हुआ वृंदावन में, इसी महीने में देवासुर का वध हुआ काम्यवन में, जहां पर हम लोग जाएंगे काम्यवन में तो दिखलाते हैं प्रतिवर्ष, इस वर्ष भी हम लोग जाएंगे दिखलाएंगे। बलदेव जी का चरण चिन्ह है और पास ही में भोजन थाली है। इसी महीने में वृषभासुर का वध हुआ, कहां पर हुआ, राधा कुंड में, और गोपियों ने कहा कि हम आपने गोवध किया है इसलिए स्पर्श नहीं करेंगी। उस समय कृष्ण जी कैसे मैं पवित्र होऊंगा, उन्होंने कहा कि पवित्र जल तीर्थों के जल में आप स्नान करके तब छुइए। तो कृष्ण ने सब तीर्थों को विश्व को बुलाया और सब तीर्थ आए और उन्होंने अपनी एड़ी से आघात किया तो वहां पर बड़ा भारी सरोवर ये बन गया कृष्ण कुंड, टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कुछ गोलाकार किंतु उसमें टेढ़ा मेढ़ा, उसमें सब तीर्थ लोग जल हो गए, उसमें कृष्ण ने स्नान किया और गोपियों को स्पर्श करने जब गए तो गोपियां तुनक गई और बोली ये तुम्हारे कुंड में स्नान करने से नहीं होगा, हमारे कुंड में आकर के स्नान करके तब पवित्र हो आई। राधा जी ने अपने अंगूठे से एक ऐसा किया तो वो कुंड हो गया किंतु पानी ही नहीं आया। कृष्ण ने तीर्थों से कहा कि आप लोग राधा जी को मना करके और हमारे कुंड का पानी उसमें भर दीजिए। राधा जी राजी नहीं हुई, वो घड़े लेकर और चले गए, चली गई मानस गंगा की तरफ, किंतु वो लोग वहीं पर सत्याग्रह कर दिया, रास्ते में लेट गए और उन्हें मनाया तो उन्होंने वो राजी हो गई और अंत में दोनों कुंडों के बीच में जो संगम स्थल था वहीं से नीचे से एक रास्ता हो गया और होल जैसी और उसी से उधर में पानी एकदम भर गया। तब फिर कृष्ण ने उसमें स्नान किया और तब फिर राधा जी प्रसन्न हो गई, तब उनको छुआ। तो उसी दिन जिसको बहुलाष्टमी भी कहते हैं, भारत पर से बहुत से जगहों से पुत्र संतान की इच्छा वाले कामना वाले बहुलाष्टमी के दिन में वो लोग स्नान करने जाते हैं, किंतु वो है राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकाश का दिन। आज ही इसी महीने में अक्रूर जी ब्रज में गए और कृष्ण को दूसरे दिन मथुरा ले आए। इसी महीने में चारुण मुष्टि को उन्होंने मारा मथुरापुरी में आकर के रंगशाला में हम लोगों के मंदिर के पीछे, और कंस का यहीं पर वध किया और विश्राम घाट में स्नान करके विश्राम किया। इसी महीने में नंद बाबा मथुरा में आए, कृष्ण बलदेव जी उनके साथ में नहीं गए, बड़े विरह में आकुल होकर के चले गए और ब्रज में उसी दिन से भी प्रलंब रास हुआ। ये दोनों को अलग अलग करो तो इसी महीने में कृष्ण का उपनयन हुआ मथुरा में, और उपनयन में कृष्ण मूर्छित होकर के गिर पड़े, मैया का स्मरण आया। मैया ने कहा था ये जब तुम्हारा उपनयन होगा मैं तुम्हारी झोली भर दूंगा स्वर्ण भर दूंगी स्वर्ण के आभूषणों से। जब उनका उपनयन हुआ और उनके गेरुआ वस्त्र पहनाए गए, खड़ाऊ पहनाया गया, दंड दिया गया, मृग चर्म पहनाया गया, उसमें बड़ी अपूर्व श्याम और बलदेवी की जोड़ी हुई। और उस समय में कहा गया जब भिक्षा मांगने जाओ तो मैया कर करके देख रहे हैं, मैया नहीं मिली, देव की सामने भिक्षा देने के लिए प्रस्तुत थी और वो मैया कहते कहते एकदम मूर्छित होकर के गिर पड़े। ये इसी महीने में हुआ। इसी महीने में गोपियों ने जो कि जनकपुर की और सुतिचरी इत्यादि थी, इसी महीने में दंडकारण्य वासी, इसी महीने में कौन सा व्रत किया? कात्यायनी व्रत किया। इसी महीने में कात्यायनी जी की पूजा की, ठंड में पानी में खड़ी रह करके एक महीने तक का व्रत किया। किंतु बड़ी विचित्र बात हुई कि कात्यायनी देवी नहीं आए। आया कौन? स्वयं, जिसको पति करने के लिए बनाने के लिए वो कात्यायनी की पूजा कर रही थी वो कात्यायनी देवी तो आई नहीं, जो वर था वही खुद ही वर बन करके आ गया, वो कृष्ण स्वयं आ गए। ये कात्यायनी महामाया नहीं है, ये जो